हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सामने वीडियो कॉल पर रोहान किसी लड़के से बुरी तरह लड़ रहा था और ये वीडियो कॉल उसे क्लब के मैनेजर ने किया था, जो वेदांत को काफी पहले से जानता था। रोहान के शरीर पर चोटों के निशान थे, तो वहीं सामने वाले लड़के का भी कुछ यही हाल था। वे दोनों एक दूसरे में इतना उलझे थे कि उनको ये भी नहीं पता था कि आसपास के लोग उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। वेदांत ने अपने सर पर हाथ मारकर जबड़े कसते हुए कहा, ये लड़का हमेशा मेरी बदनामी करवा देता है, क्या जरूरत है इसे इतनी सुबह सुबह जाकर क्लब में दंगा करने की। फिर उसने मैनेजर से कहा, आप बस 10 मिनट और संभालिए इनको, मैं आता हूँ। मैनेजर ने ओके सर बोलते हुए कॉल कट कर दिया और वेदांत तेजी से अपने ऑफिस से निकलकर उस क्लब के लिए निकल पड़ा जो उसके ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ था। वेदांत जैसे ही क्लब में पहुंचा, वहां का माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत पड़ गया, क्योंकि वेदांत नेमानी को वहां का बच्चा बच्चा जानता था। वेदांत धीमे कदमों से चलकर अंदर गया। वेदांत के साथ ही दो बॉडीगार्ड थे। उन्होंने जाते ही रोहान और उस दूसरे लड़के को एक दूसरे से अलग कर दिया। रोहान बिल्कुल किसी घायल शेर की तरह गुर्राते हुए बोला, छोड़ हरामजादे, मेरा हाथ छोड़, मुझे इस कमीने को सबक सिखाना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतने भद्दे शब्द मेरी फैमिली के बारे में यूज करने। वेदांत वहां से तेज कदमों से VIP एरिया की तरफ चला गया, जहां किसी और का जाना अलाउड नहीं था। वो बॉडीगार्ड रोहान और उस लड़के को खींचते हुए वेदांत के सामने ले आए। अगले ही पल वेदांत ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, रोहान, इतनी सुबह सुबह तुम्हें किसने कहा है कि ड्रिंक करनी चाहिए और आकर हर किसी के गले पड़ जाना चाहिए, बिल्कुल किसी आवारा कुत्ते की तरह। रोहान ने गुस्से में अपनी मुठियाँ कसी और अगले ही पल उस लड़के की तरफ अपनी लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए बोला, मेरी कल शादी हुई है, ये न्यूज़ बिल्कुल आग की तरह फैल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहरबानी की वजह से। दी ग्रेट CEO की शादी हुई है, तो ये न्यूज़ गुजरात में फैलनी नॉर्मल थी, लेकिन साथ में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। ये बेहुदा आदमी मुझे बोलता है कि वाइफ स्वैपिंग करेगा, क्योंकि इसकी भी शादी अभी हुई थी, ब्लडी बास्टर्ड। इसके साथ ही रोहान का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा और वो उस लड़के के बाल खींचते हुए एक और मुक्का उसे मारने ही वाला था कि वेदांत तेजी से उसके पास आया और उसे उस लड़के से अलग करते हुए एक खींच के थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए बोला, तो क्या तू हर उस आदमी का मुंह पकड़ेगा जो तुम्हारी फैमिली की औरतों के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं। रोहान ने गुस्से से वेदांत की तरफ देखते हुए बोला, हाँ पकड़ लूंगा मैं हर किसी का मुंह, और सिर्फ पकड़ने तक बात नहीं रुकेगी, उसका मुंह तोड़ भी डालूंगा। वेदांत ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, हर वो घटिया काम तुम कर चुके हो रोहान नेमानी, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जुआ खेलना, ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, क्लब में आकर लड़कियों के साथ डांस करना, इसके बाद ये वाइफ स्वैपिंग करने वाला जुर्म भी ज्यादा बड़ा नहीं है तुम्हारे लिए। तुमको लोग उसी कैटेगरी में देखते हैं जिस कैटेगरी के लोगों के लिए ऐसी चीज नॉर्मल होती हैं। तो अब तुम कैसे किसी का मुंह पकड़ सकते हो या तोड़ सकते हो, जब तुमने अपनी इमेज ऐसी ही क्रिएट कर रखी है। इसमें इसकी गलती नहीं है, इससे ज्यादा तुम्हारी गलती है। तुम्हारा करैक्टर कैसा है ये देखकर ही लोग सामने से आकर तुमसे वैसी बातें करते हैं। मुझे तो किसी ने ये नहीं कहा ना ही मुझे कोई टॉन्ट मारा कि तुम्हारी शादी हो गई, क्योंकि मेरी इमेज तुम्हारी जैसी नहीं बनकर रह गई है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन हर बार तुम बिल्कुल किसी आवारा जानवर की तरह बिहेव करते हो। उसमें तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन मेरा नाम जरूर खराब हो जाता है। फिर उसने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए कहा, बस कर भाई, अपनी इमेज की धज्जियां तो पहले उड़ा चुका है, कम से कम मेरी वाली को बख्श दे। रोहान के पलकें भीग कर आपस में चिपक चुकी थीं और मुठियां गुस्से से इतनी ज्यादा कसी हुई थीं कि उसके खुद के नाखून उसकी हथेली में चुभने लगे थे। वेदांत ने उस साइड वाले लड़के की तरफ देखकर बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। इसके अगले ही पल बॉडीगार्ड उस लड़के को उठाते हुए वहां से बाहर ले गए, क्योंकि रोहान की मार खाने के बाद कोई इंसान अपने पैरों पर चलकर तो जा नहीं सकता है। वेदांत रोहान को खरी खोटी सुनाकर जा चुका था, तो वहीं उसके जाते ही रोहान अगले ही पल घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने कानों को ढकते हुए बुरी तरह चीख उठा, क्योंकि वेदांत के शब्द बार बार उसके कान में गूंज रहे थे। पता नहीं क्यों अनाही के बारे में सुनकर उसे इतना बुरा लगा था, जबकि अनाही के साथ तो उसका रिश्ता इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद रोहान अनाही की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था कि वो किसी और से भी उसके लिए इतनी घटिया शब्द नहीं सुन पाया और अपना आपा खो बैठा। वरना उसने डिसाइड किया था कम से कम आज तो वो किसी से कोई लड़ाई नहीं करेगा, आराम से अपना पूरा दिन बताएगा ताकि पहले ही दिन अपनी पत्नी के सामने मार खाकर न चला जाए। लेकिन अफसोस, वो ये नहीं कर पाया। उसका पूरा चेहरा चोट से भरा हुआ था, जिसे देखते ही पता चल रहा था कि आज उसने किस हद तक लोगों के साथ हाथापाई की है। वहीं वेदांत को भी काफी बुरा लगा था रोहान को ऐसे कड़वे शब्द बोलकर, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था रोहान को सुधारने के लिए। मन ही मन वेदांत खुश हो रहा था कि पहली बार रोहान ने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेकर किसी से दंगा किया है। वेदांत ने गहरी सांस लेकर अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए धीरे से कहा, उम्मीद करता हूँ रोहान, तुम आगे भी अपनी पत्नी की इतनी ही इज्जत करोगे और उसकी इमेज का ख्याल रखोगे। एक छोटी सी उम्मीद मिली है तुम्हारी शादी से कि तुम सुधर जाओगे। शाम का वक्त, निमानी हाउस से एक एक करके सारी औरतें जा रही थीं। मुंह दिखाई की रस्म के बाद अनाही और वीहा की पहली रसोई की रस्म भी हो चुकी थी और सबको ही अनाही और वीहा का खाना बेहद पसंद आया था। इस वक्त वीहा अनाही के कमरे में मौजूद थी और वो अनाही को एक एक करके गिफ्ट दिखा रही थी जो उसकी ताई सास और काकी सास ने दिए थे। अनाही भी मुस्कुराते हुए वीहा को देख रही थी जो काफी खुश नजर आ रही थी। अनाही के लिए सारी दुनिया एक तरफ है और उसकी छोटी बहन की खुशी दूसरी तरफ। वीहा कुछ और बोल पाती उससे पहले ही उसके कान में एक बिल्ली के बोलने की आवाज आई और उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या यहाँ बिल्ली रहती है? उसके इतना बोलते ही अनाही को रोहान का सुबह वाला बिहेवियर याद आया और उसने जल्दी से कहा, हाँ वो रोहान जी को पसंद है, उन्होंने पाल रखी है। मुझे नहीं पता वो है कहाँ, लेकिन बहुत खतरनाक है। सुबह सुबह ही मेरे गाल पर पंजा रखकर मुझे देख रही थी जैसे इन्वेस्टिगेट कर रही हो कि ये कौन नया मेंबर आ गया है। अनाही की बात सुनकर विहा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, ओ गॉड, ये तो बहुत फनी सीन था, मुझे भी देखना चाहिए था। आपको बिल्ली से बेहद चीड़ मचती है, मुझे पता है। दोनों बहनों ने हंसते हुए ढेर सारी बातें की थीं, जिसके बाद वीहा काफी थक चुकी थी तो वो भी अपने कमरे में चली गई और अनाही भी अरमान के कमरे को देखने लगी। रोहान सुबह इतनी जल्दबाजी में गया था कि उसने अपना कम्फर्टर भी समेट के नहीं रखा था। अनाही उसका बेड सेट कर रही थी और उसके बाद टेबल। फिर अनाही ने भी फाइनल एक चैन की सांस लेते हुए कहा, अब मैं अपनी बालकनी सेट करती हूँ क्योंकि मेरा स्पेस तो वही है, रोहान जी की मैडम जी का पर्सनल स्पेस, द ब्यूटिफुल बालकनी, क्या ग्रेट चॉइस है। खुद पर ही हंसते हुए अनाही बालकनी की तरफ चली गई। वो बालकनी सच में बेहद खूबसूरत थी, शायद किसी ने बड़ी क्रिएटिविटी से उसकी डिजाइन किया था।
देखते ही देखते दिन भी ढल गया। वेदांत ऑफिस से करीब 8 बजे वापस आया था, जिसके बाद सबने एक साथ बैठकर डिनर किया, लेकिन अनाही उस डिनर में शामिल नहीं हुई, वो सबको सर्वे कर रही थी। उसे ऐसा सर्वे करते देखा माधवी ने कहा, बेटा हम बहू और बेटियों को एक समान ही मानते हैं, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हो। अनाही ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, वो मैं रोहान जी आएंगे तो उन्हीं के साथ खा लूंगी, आप सब खा लीजिए। यह सुनकर कहीं ना कहीं माधवी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रोहान की फिक्र सिर्फ वो कर सकती थी, इसके इस घर में उसके अलावा कोई नहीं। माधवी ने अपने मन ही मन कहा, मुझे जल्द ही रोहान से बात करनी पड़ेगी, कहीं इस लड़की के जाल में वो फंस ना जाए। फिर उसने मुस्कुराते हुए अनाही को देखकर हाँ में सर हिला दिया, तो वहीं निवेदिता भी काफी खुश हुई थी अनाही की ये बात सुनकर। 9 से 10 और 10 से 11 भी, लेकिन रोहान घर नहीं आया। ये देखकर अनाही को बहुत बुरा लगा। उसे जोरों की भूख लगी थी, एक तो सुबह से इतनी सारी रस्में उसने कर ली थी, जिस वजह से भी वो काफी थका हुआ महसूस कर रही थे। वो बस आंखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसे बाहर स्पोर्ट्स कार के रुकने की आवाज आई और वो झट से उठकर बैठ गई और बाहर देखने लगी। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि रोहान लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी से बाहर निकला था। उसे ऐसा करता देखा अनाही तुरंत ही बाहर की तरफ दौड़ पड़ी ताकि उसे संभाल पाए।